एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बास्केटबॉल की दुनिया के एक ऐसे चैप्टर की जो जुनून, झगड़ों और मतलब कभी ना भूलने वाले मोमेंट से एकदम भरा हुआ है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 1990s की न्यूयॉर्क निक्स टीम की।
और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास है क्रिस हैरिंग की किताब ब्लड इन द गार्डन, द फ्लैग्रेंट हिस्ट्री ऑफ द 1990s न्यूयॉर्क निक्स।
बिल्कुल, ये एक ऐसी टीम की दास्तान है जिसने, अजीब बात है, कभी एनबीए चैंपियनशिप जीती नहीं।
हाँ, ट्रॉफी नहीं उठाई,
लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क शहर के दिलो दिमाग पर और बास्केटबॉल की हिस्ट्री में मतलब एक गहरी छाप छोड़ दी।
यही तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा कैसे हुआ, एक टीम जो अपने फाइनल गोल यानी चैंपियनशिप तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, वो इतनी यादगार, इतनी असरदार कैसे बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जो भूमिका थी, उनका जो रोल था खेलने का, वो ही उनके गोल के आड़े आ गया।
क्या बात कही, और ये कहानी आज भी रेलेवेंट है क्योंकि ये सिर्फ कोर्ट की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप की कहानी है।
बिल्कुल,
पहचान कैसे बनती है, शहर और टीम का रिश्ता कैसा होता है।
हाँ।
और हाँ, ये सवाल भी कि भाई सक्सेस का असली मतलब क्या है।
बिल्कुल,
क्या सिर्फ जीतना ही सब कुछ है
या कहानी का इम्पैक्ट ज्यादा मैटर करता है। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार पड़ताल।
तो पहले बात करते हैं लेखक की, क्रिस हैरिंग।
हाँ।
अमेरिका के काफी जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं।
हाँ, सुना है इनके बारे में,
बड़े नाम है, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, वॉल स्ट्रीट जर्नल और खास तौर पे ESPN का जो 538 है।
अच्छा, वो जो आंकड़ों वाला है।
जी जी,
डेटा जर्नलिज्म।
हाँ वही, जो आंकड़ों के गहरे एनालिसिस के लिए फेमस हैं। इन सब बड़ी जगहों पर काम किया है हैरिंग ने।
तो मतलब ये सिर्फ स्कोल नहीं बताते होंगे, कहानी के पीछे की कहानी बताते होंगे।
बिल्कुल, यही उनकी खासियत है, वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करते, आंकड़ों के पीछे जो इंसानी जज्बात हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनको पकड़ते हैं।
गहराई होती है इनकी राइटिंग में।
हाँ।
सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ और उसका मतलब क्या था।
और इस किताब के लिए जो उन्होंने रिसर्च की है वो तो मतलब कमाल है, 200 से ज्यादा इंटरव्यूज।
200?
हाँ, उस जमाने के खिलाड़ी, कोच, मैनेजमेंट वाले लोग, यहाँ तक कि जो सबसे बड़े दुश्मन थे ना टीम के।
अच्छा,
राइवल से भी बात की।
हाँ,
उनसे भी, मतलब वो कहानी की हर परत खोलना चाहते थे।
और एक बात और है, हैरिंग खुद न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं उसी दौर में।
हाँ ये भी है, उन्होंने वो माहौल जिया है।
लेकिन वो एक फैन की तरह नहीं लिख रहे, वो एक जर्नलिस्ट है, बिल्कुल निष्पक्ष। जहाँ टीम की हिम्मत की तारीफ करनी है वहाँ करते हैं।
सही।
लेकिन जहाँ उनकी कमियां हैं, उनकी हद से ज्यादा आक्रामकता है, उस पर भी खुलकर लिखते हैं।
तो हमें एक बैलेंस्ड पिक्चर मिलती है, ये अच्छी बात।
चलिए अब किताब पर आते हैं, ब्लड इन द गार्डन। आखिर ये है किस बारे में?
देखो, ये सिर्फ एक बास्केटबॉल टीम की कहानी नहीं है। हैरिंग का जो मेन पॉइंट है वो ये कि 90s की निक्स टीम वो उस वक्त के न्यूयॉर्क शहर का एकदम आईना थी।
अच्छा,
कैसे?
मतलब जैसे न्यूयॉर्क उस वक्त था ना, थोड़ा रफ एंड टफ, थोड़ा गुस्सेल, किसी से भिड़ने को तैयार।
हाँ हाँ, वो इमेज तो है शहर की।
लेकिन अंदर से मजबूत, जिद्दी निक्स टीम भी वैसी थी।
तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी गेम से। पैट्रिक इविंग जैसा सुपरस्टार तो था उनके पास।
हाँ, इविंग थे,
पर टीम में कोई खास पहचान नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, बिखरी हुई सी थी।
बिल्कुल।
फिर एंट्री होती है कोच पैट रायली की।
हाँ, पैट रायली, लेकर्स वाले रायली।
वही, लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में वो अपने लेकर्स वाले शो टाइम अंदाज में नहीं आए, मतलब वो जो तेज तर्रार फ्लैशी बास्केटबॉल था ना।
हाँ, वो ग्लैमर वाला,
वो यहाँ नहीं था। यहाँ आकर उन्होंने जैसे पूरा अपना स्टाइल ही बदल दिया।
क्या किया उन्होंने?
उन्होंने एक नई पहचान बनाई टीम की, एकदम फोकस्ड, ब्रूटल डिफेंस, जबरदस्त फिजिकल गेम और हर पॉइंट के लिए लड़ना।
अच्छा,
किताब दिखाती है कि कैसे रायली ने टीम का पूरा कल्चर ही बदल डाला, मेहनत, अनुशासन, इसके नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए
और टीम देखते ही देखते मतलब एक खतरनाक टीम बन गई।
हाँ, लीग की सबसे डरावनी टीमों में से एक।
फिर वो दौर आता है यादगार प्लेऑफ सीरीज का, वो तो जैसे जंग होती थी।
अरे बिल्कुल, माइकल जॉर्डन के शिकागो बुल्स के साथ वो लड़ाइयाँ।
हाँ,
रेगी मिलर और इंडियाना पेसर्स के साथ वो कड़वी दुश्मनी जिसमें धक्का मुक्की, गाली गलौज सब आम था।
हाँ हाँ, याद है।
और बाद में पैट रायली जब मियामी हीट चले गए तो उनके साथ वो झगड़े, कई बार तो हाथापाई की नौबत आ जाती थी।
उफ।
और कहानी का जो पीक पॉइंट है वो है 1993-94 का सीजन।
हाँ, जब जॉर्डन नहीं थे।
हाँ, जॉर्डन रिटायर हो गए थे, निक्स को लगा बॉस ये हमारा साल है, ये है मौका चैंपियनशिप जीतने का, फाइनल तक पहुंचे भी। लेकिन ह्यूस्टन रॉकेट्स से 7 गेम के मतलब एकदम कांटे की टक्कर में हार गए और जिस तरह हारे वो बहुत दिल तोड़ने वाला था।
तो ये किताब सिर्फ स्कोर और स्टैट्स का लेखा जोखा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये लीडरशिप पर है, टीम कैसे बनती है, बार बार मंजिल के इतने करीब आकर हार जाने का दिमाग पर क्या असर होता है,
वो साइकोलॉजी,
और आखिर में एक ऐसी टीम की लेगेसी जो शायद अपनी जीतों से ज्यादा अपनी उन यादगार दर्दनाक हारों के लिए जानी जाती है। उनका रोल इतना बड़ा था पर गोल हमेशा अधूरा रहा। अच्छा, तो अब जरा कहानी के अलग अलग हिस्सों में चलते हैं, गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं 1991-92 से, जब पैट राइली आए।
हाँ, तो जैसा हमने कहा टीम के पास एविंग थे पर टीम में वो बात नहीं थी। राइली आए और उन्होंने पहला काम किया टीम को एक पहचान देना।
वो पहचान क्या थी?
पहचान थी टफनेस, डिफेंस, रिबाउंडिंग, फिजिकैलिटी। उन्होंने प्रैक्टिस को नर्क बना दिया, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया, खिलाड़ियों के दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हें हराना सबसे मुश्किल होना चाहिए।
और खिलाड़ियों ने इसे अपनाया?
हाँ, चार्ल्स ओगली जैसे खिलाड़ी तो पहले से ही टफ थे, उनको और शह मिली, वो टीम के एनफोर्सर बन गए। राइली का मैसेज क्लियर था, यहाँ ग्लैमर नहीं, ग्राइंड है, मेहनत है।
और नतीजा?
नतीजा तुरंत दिखा, टीम का रवैया बदला, वो जीतने लगे। लेकिन फिर असली टेस्ट आया 1992-93 में, शिकागो बुल्स से मुकाबला।
ओह, जॉर्डन और पिपिन वाली बुल्स।
अब राइली की ये डिफेंसिव फिजिकल मशीन टकराने वाली थी लीग की सबसे टैलेंटेड टीम से। किताब इन मैचों को मतलब युद्ध की तरह डिस्क्राइब करती है।
क्या हुआ उनमें?
निक्स ने जॉर्डन और पिपिन को रोकने के लिए हर पैंतरा आजमाया, फिजिकल प्ले, हार्ड फाउल्स, माइंड गेम्स। जॉन स्टार्क्स का वो जॉर्डन के ऊपर से डंक,
हाँ वो आइकॉनिक है,
वो इसी दौर का है। निक्स हारे लेकिन उनकी हम बनाम दुनिया वाली मेंटालिटी और पक्की हो गई।
फिर आया 1994, किताब इसे सुनहरा मौका कहती है।
बिल्कुल, जॉर्डन चले गए थे बेसबॉल खेलने, निक्स को लगा अब कौन रोकेगा हमें।
हाँ, रास्ता साफ था।
इस हिस्से में फोकस है इंडियाना पेसर्स के साथ ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स पर, रेगी मिलर के साथ वो राइवलरी।
ओहो, रेगी मिलर।
हाँ, कौन भूल सकता है वो गेम 5 जब मिलर ने आखिरी क्वार्टर में 25 पॉइंट मार दिए MSG में और निक्स फैंस को चिढ़ाया था, वो चोक वाला इशारा।
हाँ हाँ, वो तो हिस्ट्री है।
लेकिन निक्स ने हिम्मत नहीं हारी, वापसी की और सीरीज जीत ली। ये दिखाता है कि वो मेंटली कितने टफ थे, पर ये भी कि कितने वॉलेटाइल, कितने जज्बाती थे।
और फिर आया फाइनल, 1994 NBA फाइनल्स, ह्यूस्टन रॉकेट्स के खिलाफ। किताब इसे कहती है गेम 7 की पीड़ा।
उफ, हाँ, ये थी दो महान सेंटर्स की लड़ाई, ईविंग बनाम हकीम ओलाजुआन।
कैसी थी सीरीज?
फिर से वही, एकदम ग्राइंडिंग डिफेंसिव बास्केटबॉल, बहुत लो स्कोरिंग, बहुत फिजिकल। इविंग पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, पूरे शहर की उम्मीदें थी।
और फिर
हेरिंग उस मोमेंट को याद दिलाते हैं गेम 6 के आखिर में, जॉन स्टार्क्स का शॉट जो मैच जिता सकता था।
हाँ।
और ओलाजुवॉन ने उसे ब्लॉक कर दिया बस उंगलियों से।
ओह।
और फिर गेम 7, निर्णायक मैच, और उसमें स्टार्क्स का वो प्रदर्शन, 18 शॉट लिए, सिर्फ 2 लगे।
अरे बापरे, 2 for 18।
हाँ, वो पढ़ते हुए भी महसूस होता है कि कितना प्रेशर होगा, कितनी निराशा हुई होगी। निक्स एक बार फिर बिल्कुल मंजिल पर आकर चूक गए।
इस हार का असर तो बहुत गहरा रहा होगा।
बहुत। और फिर 1995 में एक और बड़ा झटका, पैट रैली मैनेजमेंट से लड़कर टीम छोड़ गए।
छोड़ गए? कहाँ गए?
मयामी हीट, जो आगे चलकर निक्स के सबसे बड़े दुश्मन बने। किताब इसे एक तरह के धोखे की तरह दिखाती है।
अच्छा, कोच ही दुश्मन बन गया।
हाँ, और इसने निक्स हीट राइवलरी को एकदम जहरीला बना दिया। राइली के असिस्टेंट जेफ वैन गुंडी कोच बने, और फिर वो मैच जिनमें झगड़े ही ज्यादा होते थे।
हाँ, वो फाइट्स तो बहुत फेमस है, पीजे ब्राउन वाला।
हाँ, पीजे ब्राउन ने चार्ली वार्ड को उठाकर पटक दिया था, और वैन गुंडी का अलोंजो मॉर्निंग के पैर से लटक जाना।
हाँ हाँ, वो तो मीम बन गया था।
बिल्कुल, ऐसा लगता था कि लड़ना ही इनकी पहचान है, चाहे सामने कोई भी हो।
कहानी का आखिरी बड़ा मोड़ आता है 1999 में, आखिरी उम्मीद।
हाँ, लॉकआउट वाला छोटा सीजन था, निक्स जैसे तैसे 8वीं सीड बनकर प्लेऑफ में पहुंची, किसी को उम्मीद नहीं थी।
अंडरडॉग्स
एकदम, और फिर उन्होंने कमाल कर दिया, नंबर 1 सीड मियामी को हराया।
वाह।
फिर अटलांटा को, फिर इंडियाना को, लैटरल स्प्रेवल, मार्कस कैम्बी, नए हीरो भर कर आए, टीम में एक नई एनर्जी थी।
फिर से फाइनल?
फाइनल तक नहीं, फाइनल के करीब, लेकिन किस्मत फिर खराब, पैट्रिक इविंग चोटिल हो गए और फाइनल में सैन एंटोनियो स्पर्स से हार गए।
फिर से वही कहानी।
हाँ, किताब इसी नोट पर खत्म होती है, एक अधूरे सपने के साथ और निक्स की लेगेसी पर एक सवाल के साथ।
तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें या थीम्स निकलती हैं उन पर बात करते हैं। पहली चीज जो मुझे लगी वो ये कि पहचान एक दोधारी तलवार है।
कैसे?
देखो, निक्स की फिजिकैलिटी, उनका डिफेंस, उनकी आक्रामकता, यही उनका रोल था, उनकी पहचान थी, इसी से वो खतरनाक बने।
हाँ, ये तो है।
पर यही उनकी लिमिट भी बन गई। इसी आक्रामकता के चक्कर में सस्पेंशन हुए, और जब फाइनल जैसी बड़ी स्टेज पर ज्यादा स्किल वाली टीमों से सामना हुआ तो उनका ऑफेंस कमजोर पड़ गया। तो जो रोल उन्हें ऊपर लाया वही गोल तक पहुंचने में शायद रुकावट बन गया।
सही बात है। असल जिंदगी में भी तो होता है ऐसा, हमारी कोई आदत या पहचान ही हमें आगे बढ़ने से रोक देती है।
बिल्कुल। दूसरी बात है ऑलमोस्ट टीम का मनोविज्ञान।
हाँ, ये टीम बार बार टॉप के इतने करीब पहुंची पर कभी पार नहीं कर पाई। इविंग पर कितना प्रेशर रहा होगा।
सोचो, इन लगातार हारों ने उन्हें रिजिलियंट तो बनाया, जिद्दी बनाया।
हाँ, लड़ना सिखाया।
लेकिन शायद कहीं ना कहीं एक निराशा भी आ गई कि आज शायद हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ये दिखाता है कि बार बार फेल होने का दिमाग पर क्या असर होता है।
तीसरी चीज, कोच सिर्फ एक्सोज नहीं बनाता, वो कल्चर बनाता है। पैट्रेली ने निक्स को सिर्फ खेलना नहीं सिखाया, उन्होंने टीम का पूरा कैरेक्टर बदल दिया, एक आइडेंटिटी दी।
ये दिखाता है कि एक लीडर कैसे ग्रुप का माहौल बना सकता है अपने विजन और सख्ती से।
हाँ, लेकिन फिर वही सख्ती बाद में टकराव की वजह भी बनी जब वो छोड़कर गए। लीडरशिप का ये भी एक पहलू है।
चौथा पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, टीम में शहर का अक्स।
हाँ, किताब कहती है कि 90s की निक्स टीम उस टाइम के न्यूयॉर्क जैसी थी, टफ, थोड़ी गुस्सैल, लेकिन हार ना मानने वाली।
शायद इसीलिए शहर ने उन्हें इतना प्यार दिया, हार में भी साथ खड़े रहे।
क्या आज भी हमारी टीमें अपने शहरों को रिफ्लेक्ट करती हैं? सोचने वाली बात है ये।
पांचवा, राइवलरी का इम्पैक्ट। निक्स की कहानी उनकी दुश्मनी के बिना अधूरी है। बुल्स, पेसर्स, हीट।
हाँ, बुल्स वो दीवार जिसे वो पार नहीं कर सके, पेसर्स वो मेंटल वॉरफेयर, वो कड़वाहट, हीट वो धोखा और नफरत।
ये सिर्फ मैच नहीं थे, ये पर्सनल लड़ाइयां थीं।
और इन लड़ाइयों ने निक्स को और डिफाइन किया और टफ बनाया। राइवलरी हमें शेप करती है।
और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, चैंपियनशिप के बिना लेगेसी क्या है?
हाँ, निक्स ने टाइटल नहीं जीता पर आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, शायद कई टाइटल जीतने वाली टीमों से भी ज्यादा।
क्यों?
क्योंकि लेगेसी सिर्फ ट्रॉफी से नहीं बनती, वो बनती है जुनून से, कहानी से, इम्पैक्ट से। निक्स ने लोगों के दिलों को छुआ। उनकी कहानियां हमें सिखाती है कि सक्सेस को सिर्फ जीत हार में नहीं नापना चाहिए। उनका रोल यादगार रहा भले ही गोल अधूरा रहा।
किताब में कुछ कोट्स या आइडियाज हैं जो वाकई उस टीम के एटीट्यूड को पकड़ते हैं। जैसे राइली का मानना था, डिफेंस ट्रैवल्स बेटर देन ऑफेंस।
हाँ, मतलब ऑफेंस तो किसी दिन चल सकता है, किसी दिन नहीं, पर टफ डिफेंस हर रात हर जगह साथ देता है। ये मेहनत और विल पावर का सिंबल था।
और टीम खुद क्या सोचती थी, किताब में है, हम शायद सबसे टैलेंटेड न हो पर हमारे खिलाफ खेलना सबसे मुश्किल होगा।
क्या बात है, मतलब अपनी कमी को ही ताकत बना लिया। उनका रोल क्लियर था, अपोनेंट को टॉर्चर करना।
और मैडिसन स्क्वायर गार्डन यानी MSG के बारे में उनका सोचना, MSG सिर्फ हमारा होम कोर्ट नहीं, हमारा किला था।
हाँ, वो जानते थे कि उस क्राउड के सामने खेलना किसी भी टीम के लिए कितना मुश्किल होता है, वो इसे अपना हथियार मानते थे।
एक और बात जो उनकी इंटेंसिटी दिखाती है, हर पोजेशन मायने रखता था क्योंकि हमने उसे मायने रखने दिया।
मतलब कोई भी प्ले लाइटली नहीं लेना, हर पल 100%, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना।
और आखिर में वो लाइन जो उनकी पूरी पहचान है, हम पसंद किए जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम सम्मान पाने की कोशिश कर रहे थे।
बिल्कुल, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं, वो चाहते थे कि टीमें उनसे डरें, उनका सम्मान करें। ये उनकी ऑथेंटिसिटी थी, अपने रोल के प्रति पूरी तरह कमिटेड। तो इस कहानी से हम अपनी लाइफ या काम में क्या सीख सकते हैं? पहली चीज तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की है।
हाँ, राइली ने दिखाया कि क्लियर विजन, कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी से किसी भी ग्रुप का कल्चर बदला जा सकता है, एक पहचान बनाई जा सकती है।
दूसरा है रेजिलियंस, लचीलापन। निक्स बार बार गिरे पर हर बार उठे। ये सिखाता है कि फेलियर से ज्यादा जरूरी है आपका रिएक्शन, आप बाउंस बैक कैसे करते हो।
तीसरा, अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को समझना। निक्स की फिजिकैलिटी ताकत थी पर वही लिमिटेशन भी बनी। ये जानना जरूरी है कि हम किस में अच्छे हैं पर यह भी समझना कि कब वही चीज रुकावट बन रही है और हमें अडैप्ट करने की जरूरत है। अपने रोल को पहचानना और जरूरत पड़े तो उसे बदलना।
चौथा, टीम मैनेजमेंट। निक्स में बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज थी। इविंग शांत, स्टार्क्स गुस्सैल, ओकली डराने वाले। इन सबको एक कॉमन गोल के लिए साथ लाना, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना, ये लीडरशिप का बड़ा टेस्ट होता है।
और शायद सबसे जरूरी सबक, सक्सेस और लेगेसी को सिर्फ नतीजों से ना आंकना।
हाँ, निक्स की कहानी याद दिलाती है कि दुनिया आपको सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स के लिए याद नहीं रखती। आपका पैशन, आपकी कहानी, लोगों पर आपका असर, ये भी एक पावरफुल लेगेसी है, भले ही आपका गोल पूरा ना हुआ हो।
मेरे लिए ना इस पूरे बातचीत में सबसे स्ट्राइकिंग बात यही रही कि कैसे एक टीम की पहचान, उसका जो एक तय रोल था खेलने का, वो शहर की पहचान से इतना जुड़ गया। और कैसे हार भी इतनी मेमोरेबल हो सकती है कि हम आज भी उसके बारे में बात करें, ये कमाल है।
और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि देखो, एक मजबूत पहचान बनाना कितना पावरफुल है। यह आपको फोकस देता है, यूनाइट करता है, लेकिन अगर आप उस पहचान में इतने फंस जाओ कि बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल ना सको, तो वही पहचान आपकी लिमिट बन जाती है। मिक्स की कहानी इसी टेंशन की कहानी है। उनकी पहचान ने उन्हें ग्रेट बनाया, पर शायद उसी ने उन्हें अल्टीमेट गोल यानी चैंपियनशिप तक पहुंचने से रोक दिया। उनकी भूमिका उनके लक्ष्य पर हावी हो गई।
तो सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी पहचान, अपने रोल्स को कैसे देखते हैं और सफलता को असल में कैसे मापते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।